कुरान में एक सूरा है, सूरह मुज़म्मिल, ये 73 नंबर का चैप्टर है, और इसका पूरा जो टॉपिक है वो बैतुल ख्याल और शब बेदारी है। और पीरों ने अपने गिनानों में हमसे यही बातें की हैं, तो हम कुरान के उन मफहूम को भी समझेंगे, मतलब को भी, और यहाँ भी देखेंगे कि पीरों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो एक थीम जो आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तेरा मौला कदी न सोवे, तुझे सोना क्यों बावे रे। ये पीरों का गिला है मोमिनीन से कि तू ऐसे मौला का मुरीद है, वो मौला खुद कभी नहीं सोता है। तो कुरान में आप देखें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुं वला नौम। खुदा की पाकी बयान करने के बाद खुदा फरमाता है उसको ना तो नींद आती है और ना ही ऊंग आती है। हमारे लिए बड़ा इम्तिहान है, हमको लगता है कि इमाम आराम करते हैं, इमाम सोते हैं, मगर पैगंबरों की और इंसान कामिल की नींद पैगंबराना नींद होती है, इसको औलियाई नींद कहते हैं। वो सोते हैं मगर जागते हैं, और इनका दिल भी उस वक्त काम कर रहा होता है। तो ये मोमिनीन से इम्तिहान होता है कि मारन स्वरूपे एक फिकर मुनीवर तमारी छे हमने, मारन स्वरूपे साहिब और क्यों जी, कि तुम एक इंसान की सूरत में मौला को देख रहे हो, इसलिए हमें तुम्हारी बड़ी फिक्र है कि तुम कहीं मौला को अपने जैसा नहीं समझने लगो, कि ये भी कोई इंसान ही है। तो कुरान में खुदा 25 नंबर्स के चैप्टर में कहता है, लोग एतराज़ करते हैं उसको, खुदा कुरान में जगह देता है कि मक्का के लोग ये कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है जो मार्केटों में फिरता है और खाता पीता है, अगर हम पर कोई हादी भेजना था तो तूने फरिश्ता क्यों नहीं भेजा। तो खुदा जवाब देता है, अगर ज़मीन पे फरिश्ते होते तो मैं फरिश्ता भेजता, मगर चूंकि तुम इंसान हो इसलिए एक इंसान को तुम्हारे दरमियान भेजा है। तो कुरान में खुदा कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुं वला नौम, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊंग आती है। तो इमाम के हुजूर में हम बैठे हों या इमाम के रूटीन पर नज़र हो, तो हमें इमाम को किस तरह से देखना है, ये पीरों की भी तालीम है, कुरान की भी तालीम है। जब पीर कहते हैं कि मेरा मौला कदी न सोवे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पीरों ने अपनी तरफ से कही है, ये दीन की बुनियाद में है कि मौला की नींद और ऊंग जो है वो नहीं होती है। इसके बाद चूंकि ये शबखेज़ी का मौजू है सूरह मुज़म्मिल में, इसकी शुरू की 10 आयतें मैं पढ़ती हूँ, रुबीना साहबा से गुजारिश है कि उसका तर्जुमा पढ़ें। तो 10 आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तलिल क़ुरआना तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअ व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला वस्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैही तब्तीला रब्बुल मशरिकी वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला वस्बिर अलामा यकूलूना व अहजरहुम हजरन जमीला। ये शुरू की 10 आयतें हैं और मैं रुबीना साहिबा से कहूँगी इसका तर्जुमा
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐ चादर लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या उससे कुछ कम आराम कर लो, इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारआमद और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज़्यादा मौजून है। उनके औकात में तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं, क्योंकि दिन के औकात में तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कट कर उसी के रहो। वो मशरिको मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, लिहाजा उसी को अपना वकील बना लो। और जो बातें लोग बना रहे हैं उन पर सब्र करो और शराफत के साथ उनसे अलग हो जाओ।
अभी पीरों ने हमको गिनान में एक तसव्वुर दिया है 8 पहर का, कि पूरे दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 8 पहर को हम कैसे समझें, हर पहर में 3 घंटे हैं, इस तरह 8 पहर में 24 घंटे का साइकिल जो है वो पूरा होता है। तो इस 8 पहर में से 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के कंसीडर किए जाते हैं, और जो रात के 4 पहर होते हैं वो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंसीडर होते हैं, 12 घंटे का। 4 पहर रात के शाम 6 बजे से इबादत शुरू करो, ये रात है सुबह 6 बजे तक, ये मतलब पूरा पीरियड है। हमारी पुरानी दुआ थी उसमें कहते थे 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर में 64 घड़ी होती है। अगर 8 पहर में 64 घड़ी है तो 1 पहर में 8 घड़ी है, और अगर 1 पहर में 8 घड़ी है तो 1 घड़ी जो है वो 22.5 मिनट्स की बनती है। तो हमारे पीर जो कहते हैं ना, खट गरी पाछली रहनी रहे, 6 घड़ी आखिरी की जब रह जाए तो रात को तुम उठा करो 6 घड़ी। तो इस हिसाब के आप इसको बाद में आराम से नेट पे पढ़ भी सकते हैं। ये एक ब्रॉड तकसीम है कि दिन और रात के 8 पहर हैं, हर पहर के 3-3 घंटे हैं, तो 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। रात के जो 12 घंटे हैं वो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चलते हैं, और इसमें हर पहर के अंदर 8 घड़ी है। तो 8 घड़ी का मतलब फिर उस 1 घड़ी में 22.5 मिनट्स होते हैं। अगर पीर कहता है खट घड़ी पाछली रहनी रहे, आखिरी की 6 घड़ी में तुम उठकर इबादत करो, तो ये कैलकुलेशन एक स्टडी के मुताबिक बनता है 3:45 AM से लेकर 6 AM तक, 2.25 घंटे का टाइम बनता है 6 घड़ी आखिरी वाली। आप देखें ये ऐन इबादत का टाइम है। तो ये जो अभी कुरान की ये सूरा आपके सामने पढ़ी गई, इसमें खुदा फरमाता है कि ए चादर में लपेटने वाले, रसूल का एक नाम है, एक टाइटल है मुज़म्मिल, ए चादर में लपेटने वाले रात को उठाकर। तो चादर में लपेटने वाला क्यों है? तो हमारे इस्माइली बुज़ुर्गों ने कहा है कि चादर में लपेटने का मतलब ये है कि ए रसूल, जो राज तुझको अपने रब की तरफ से मिल रहे हैं उसको छुपा के रख, उसको हर किसी के सामने नहीं बयान करना है, जानने वाले के सामने बयान करना है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि रसूल पर जब वही नाजिल हुई तो रसूल पर बहुत कपकपी तारी हो गई और वो घबरा गए और कुछ शायद समझने में और समझने के लिए किसी से मदद ली, तो उस वक्त उन्होंने चादर लपेट ली। और कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने रसूल को जादूगर कहा, मजनून कहा, तो रसूल को इतना अफसोस हो गया कि रसूल एक चादर लपेट के बैठ गए। ये ज़ाहिरी तफसीर है, ज़ाहिरी लोगों का बयान है, मगर ये बड़ा अजीब बयान होगा कि एक पैगंबर जो मेराज तक होकर आया है वो लोगों की बातों से गमगीन होकर चादर लपेट कर एक कोने में बैठ जाए, जबकि मोमिन को भी मायूस होने की इजाज़त नहीं है। तो हमारे इस्माइली बुज़ुर्गों ने इसकी तावील की है कि ए वो रसूल जिसको खुदा के भेद मालूम हुए हैं, अब इन भेदों को लपेट के रख, इनको छुपा के रख और जानने वाले को देना, और तू रात को उठाकर। अब खुदा रात में 2 ऑप्शंस देता है रसूल को, कहता है रात के 3 हिस्से करो, 3 पहर करो रात के। जैसे हमने पीर के गिनान में देखा 8 पहर में से 4 पहर रात के हैं, जो शाम 6 से सुबह 6 बजे तक हैं, और ये खुदा जो 3 पहर की बात करता है वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बनते हैं, क्योंकि रात को 3 हिस्से में तकसीम किया है। हमारे पीरों ने 4 हिस्से में तकसीम किया है, शाम को 6 बजे से स्टार्ट किया है, मगर खुदा ने इसको 3 हिस्से में तकसीम किया है, और रात को 9 से लेकर 6 तक, यानी 3-3 घंटे का 1 पहर है, 9 से 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ये 3 हिस्से हो गए। अब खुदा क्या कहता है, ए रसूल या तो 1 पहर सो कर बाकी 2 पहर तू इबादत कर, ये बहुत मुश्किल बात है, सिर्फ 3 घंटे सो कर बाकी तू इबादत कर। पीरों ने कहा ना कि शूरा होए तो रह नहीं जागो, बहादुर हो तो रात को जाग के देखो, रात को जाग के दिखाओ, शूरा होए तो रह नहीं जागो, अगर तुम में हिम्मत है तो पूरी रात जाग कर देखो, थोड़ा सा सो के पूरी रात जाग कर देखो। तो रसूल से कहा गया या तो 1 पहर आराम करो, 2 पहर इबादत करो, अगर ये नहीं कर सकते हो तो 2 पहर आराम करो, 1 पहर इबादत करो। 2 पहर आराम करो का मतलब है 6 घंटा सो जाओ और आखिरी के 3 घंटे जो है वो तुम इबादत में गुजारो। तो आप देखें पीरों ने भी खट गरी पाछली रहनी रहे, ये भी वो टाइम बनता है 3:45 से 6 बजे तक का, और कुरान में आखिरी पहर में इबादत करने का जिक्र है, तो वो आखिरी पहर भी 3 से 6 बजे का टाइम बनता है। तो आप देखें कुरान और गिनान में इबादत के टाइम और तरीक़ाकार में एक बड़ी मुमासिलत है। तो कहते हैं कि एक तो शब बेदारी होती है, पूरी रात जागना, मगर ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पीर कहते हैं कि शूरा होए तो रहे नहीं जागो, अगर हिम्मत है तो जागो पूरी रात, नहीं तो खट घड़ी पाछली रहे नहीं रहे। यहाँ तो कम से कम आखिरी की 6 घड़ी तो उठ जाओ ना, और उस 6 घड़ी में तुम इबादत करो। तो खुदा भी रसूल से कहता है, कर सकता है तो रात को सिर्फ एक पहर आराम कर, बाकी 2 पहर इबादत कर। नहीं कर सकता है तो 2 पहर आराम करके एक पहर इबादत कर। और एक पहर जो है वो 3 घंटे का बनता है, लेकिन इसी सूरा के आखिर में खुदा फरमाता है कि आपके काम होते हैं, कभी सफ़र होता है, तो जितना जाग सकता है, जितना याद कर सकता है, इतना याद करो। और इसमें एक चीज़ आगे खुदा कहता है कि जब तू ऐसी इबादत करेगा, इसमें तू कुरान पढ़। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि सुबह की इबादत में कुरान भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ कुरान का मतलब है इसमें आज़म पढ़। क्योंकि खुदा आगे कहता है कि जब तू अपने रब का जिक्र करे तो दुनिया की हर चीज़ से कट ऑफ कर ले अपने आप को, और सिर्फ उसी की तरफ ध्यान लगाओ। इसका जिक्र गिनान में बहुत सारे पार्ट में है कि जंपियो जाम्प वाला जो है कि तू दुनिया और माफिया से बेखबर हो जा और सिर्फ इसम के उसके साथ साथ इबादत कर। इसका एक चीज़ मैंने नोट भी किया था जिसमें कहा गया है कि तुम अपना रिदम बिल्कुल ना तोड़ो, ये गिनानों में है। हाँ, जेवा तान न त्रूटे तार के सुरती बांध जोरे लोल, जां की सुरती लागी भर मंड के अमृत रेल जोरे लोल। मतलब जिसका ध्यान लग गया वो अमृत से सैराब हो गया, जान की सुरती लागी भर मंड के नूर माहे खेल जोरे लोल। अगर तेरा ध्यान लग गया तो तू नूर से खेलेगा, नूर तेरे इतने करीब आएगा कि तू नूर से खेलेगा। ऐसे मौजजात होंगे कि तुझे लगेगा कि नूर खुदा का जो है वो तेरे साथ खेल रहा है, तू उसे इतना बेतकल्लुफ हो जाएगा, नूरानी मौजजे तेरे साथ होंगे। तो ये कहा गया कि खुदा कहता है इस तरह इबादत करो कि पूरी दुनिया से टूट कर इबादत करो, कट ऑफ होकर इबादत करो। वस्कुरु इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैही तब्तीला, उसका नाम का जिक्र करो, उसके इसम का जिक्र करो, यहाँ लफ्ज़ इसम है, और ऐसा जिक्र करो कि तुमको दुनिया माफिया का कुछ पता न चले। तो पीरों ने भी वही बात की है कि तुम ऐसा जिक्र करो। तो एक तो आप देखें ये मुमासिलत हो गई कि रात की 6 घड़ी इबादत करना है, खुदा फरमाता है आखिरी पहर इबादत करना है। और एक हदीस में है कि जब रात के 2 पहर गुजर जाते हैं तो आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होता है और कहता है कोई जिसकी दुआ मैं आसमान तक ले जाऊं, है कोई जो बख्शिश कराना चाहता हो। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने भी फरमाया है कि शबे कदर को आधी रात को एक फरिश्ता उतरता है और कहता है कोई जिसके गुनाह माफ़ कराऊं, है कोई जिसकी दुआ ऊपर ले जाऊं। फिर इमाम फरमाते हैं हर रात आधी रात को ऐसा एक फरिश्ता उतरता है। तो ये बात सिर्फ शबे कदर तक महदूद नहीं है। तो आप देखें सारी बातें कितनी बराबर आती हैं। कुरान ने कहा आखिरी पहर में उठो, पीर ने कहा खट घड़ी पाछली रहे नहीं रहे, और कहा गया कि इसी आखिरी पहर में फरिश्ता आसमान से उतरता है और कहता है कोई जिसकी दुआ मैं आसमान पे ले जाऊं। तो ये नूर की इबादत की कबूलियत का वक्त है और उस वक्त फरिश्ता पुकारता है। तो ये बातें कुरान और गिनान में बिल्कुल एक जैसी बनती हैं। इसके बाद खुदा कहता है कि अगर लोग तुझे कुछ कहते हैं तो इस पर सब्र कर, और तेरा रब जो है वो मशरिक का भी है और मगरिब का भी है, तो उसी को अपना वकील बना ले। तो दुनिया के कामों में भी मौला को अपना वकील बनाना होता है, कोई काम हमसे नहीं होता है। तो एक दुआ है हसबुनल्लाह व निमल वकील निमल मौला व निमन नसीर, ये कुरान की 2 अलग-अलग आयतें हैं। इसका मतलब है हमारे लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है, वही हमारा बेहतरीन वकील है, वही हमारा बेहतरीन मददगार है, वही हमारा बेहतरीन सरपरस्त है। तो अक्सर मैं अपनी दुआ में ये तस्बीह पढ़ के ये भी कहती हूँ कि या मौला दुनिया की इस ज़मीन पर जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं या हमसे नहीं हो रहा है, उसके लिए तू आसमान पर हमारा वकील बन जा और तू वहाँ से हमारी वकालत कर। जब दुनिया में कोई आदमी अपना केस खुद नहीं लड़ सकता है तो एक वकील लेता है। तो खुदा मतलब इस आयत में खुदा कहता है हसबुन अल्लाह हुवा निमल वकील, मोमिनीन को ये दुआ सिखाई है कि हमारे लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है, वही हमारा बेहतरीन वकील है, और इसके अलावा किसी और वकील की ज़रूरत नहीं है। एक माना में ये रूहानी तरक्की की बात है ऑफकोर्स, लेकिन दुनिया के कामों के लिए भी हम मौला से कह सकते हैं कि या मौला तू ही हमारा वकील है, और जो काम हम ज़मीन पर नहीं कर सकते, जो केस हम खुद नहीं लड़ सकते, तू आसमान पर हमारे लिए लड़ ले। और उसमें हमें कामयाब कर दे। तो ये एक बहुत अच्छा तसव्वुर है। तो रसूल से कहा गया है, सुबह उठने इबादत के बाद खुदा वकील बनता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पहले इबादत है फिर मदद है, इबादत करोगे तो मदद मिलेगी। और इसकी मिसाल हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह से दी है कि जब आप इबादत करते हो, अपनी एनर्जी को खर्च करते हो, मौला देखता है कि आप कोशिश कर रहे हो और फिर नहीं कर सकते हो, और फिर आपको या अली मदद, तो वो मदद के लिए लपकेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो, एक छोटा सा पत्थर उठाना है, आप लोगों से कहते हो मेरी मदद करो, तो लोग कहेंगे कि इतना काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। हाँ, आप एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हो और नहीं उठा सकते हो, तो अगर अच्छे लोग होते हैं तो दो चार भाग के आते हैं, हमारी मदद करते हैं। लेकिन छोटे से काम के लिए कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। तो इबादत के बाद खुदा वकील बनता है, इबादत के बाद मदद आती है। तो रूहानी मदद जो है वो इबादत से कंडीशनड है कि आप इबादत करेंगे तो उसकी रूहानी मदद आएगी, ऐसी मदद आएगी जो हमको चाहिए। तो ये उठ बैठ रे किया सूता, तेरा सोना भलेरा नाही, तेरा शापिर कभी न सोवे, तुझे सोना क्यों पावे, खट घरी तू पा चली जागो, चेतो मुनिवर भाई, शूरा होए तो रहनी जागो, चेतो मेरे भाई। पीरों ने ये भी चैलेंज दिया है, बहादुर है तेरी हिम्मत है तो रात जाग के दिखा, तेरो साहिब कभी न सोवे, बंदा तुझे सोवण क्यों भावे। पीर सदर दिन का है, और ये हमने घड़ी और पहर की बात की।